सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिने निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे नित्य चैतन्य चरितामृत के 15वें सत्र में। हमने मध्यलीला प्रारंभ की है जिसमें हम लोग पहले दो अध्याय पुनः एक छोटा सा हम लोग अनुक्रमणिका, आपने देखा होगा कि हम लोग इस प्रकार से अनुक्रमणिका की हर रोज अगले 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 अध्याय तक जा रहे हैं ताकि थोड़ा थोड़ा याद रहे। पहले दो अध्याय में शेष लीला की सारांश रूप में चर्चा कविराज गोस्वामी करते हैं। महाप्रभु संन्यास लेने के पश्चात वृंदावन जाना चाहते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु उन्हें छल पूर्वक अद्वैताचार्य के घर पर लेके जाते हैं। वो तीसरा अध्याय है महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर पर रहना। वहां पे शची माता आके मिलती है उन्हें, कई सारे बंगाल से भक्त आके मिलते हैं और शची माता विनती करते है कि आप वृंदावन न जाते हुए जगन्नाथपुरी में रहिए। महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी के लिए निकलते, वहां से रास्ते से जाते 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 चौथा अध्याय माधवेंद्रपुरी, इनकी भक्ति की महानता, गोपाल जी की प्रतिष्ठा और खीरचोर गोपीनाथ इनका वृत्तांत, अध्याय पांचवा साक्षी गोपाल इनका वृत्तांत, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में पहुंच जाते हैं, अध्याय छठा सार्वभौम भट्टाचार्य इनका उद्धार, वहां से फिर महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा प्रारंभ करते हैं, अध्याय सातवा दक्षिण भारत यात्रा का प्रारंभ और वासुदेव इसका उद्धार। दक्षिण भारत घूमते घूमते महाप्रभु विद्यानगर में रामानंद राय इनसे मिलते हैं, अध्याय आठवा रामानंद राय संवाद। उसके पश्चात महाप्रभु आगे जाते हैं और संपूर्ण अध्याय नौ दक्षिण भारत भ्रमण। तो हमने देखा दक्षिण भारत में महाप्रभु किस प्रकार से नाना मत ग्राह ग्रस्तान, अलग अलग जो मत है, मगरमच्छ के रूप में जिस प्रकार से हाथी को पकड़ा हुआ है उस प्रकार से कई सारे विद्वत जनों को अलग अलग मतों ने ग्रस्त लिया था और महाप्रभु ने सबका उद्धार किया। किस प्रकार से बुद्धिस्ट लोगों को उद्धार किया, उड़पी के तत्ववादियों का उद्धार किया और भट्टाथरी इनसे कालकृष्ण को कैसे बचा के लेके आ गए, परमानंदपुरी को मिले, नासिक में आए, इस प्रकार से। और दो प्रमुख ग्रंथ वो दक्षिण भारत से लेके आए अपने साथ, आपको यदि याद है ब्रह्म संहिता और कृष्ण कर्णामृत, ये अपने साथ वो लेके आते हैं। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत से महाप्रभु अभी जगन्नाथपुरी पहुंच गए हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ रात बिताई, कल हमने इसकी चर्चा की और सारा दक्षिण भारत का वृत्तांत उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को सुनाया था। तो इस प्रकार से नौ अध्याय मध्यलीला के हमारे हो जाते हैं। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अध्याय दसवां जिसका शीर्षक है महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में निवास आना और कई सारे भक्तों का महाप्रभु से मिलना। क्योंकि अभी महाप्रभु इतने समय तक दक्षिण भारत घूमने के लिए गए थे प्रचार के लिए, तो अभी सारे भक्त यहां पर मिलने के लिए उत्सुक है महाप्रभु से, तो वो अभी महाप्रभु को मिलते हैं। अध्याय दस। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। पूर्वे अबे महाप्रभु चलीला दक्षिणे, प्रताप रुद्र राजा तबे बोलाईला सार्वभौमे। पहले जब महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए निकलने से निकले थे, मतलब अध्याय सातवें, जब निकले थे, राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथपुरी के राजा उस समय के थे, वो सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाते हैं अपने पास और सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा प्रताप रुद्र इनके बीच में वार्तालाप होता है। राजा पूछते हैं, सार्वभौम मैंने सुना है कोई महापुरुष तुम्हारे यहाँ पे रहने के लिए आए है, कोई सन्यासी आपके यहाँ पे तेजस्वी रहने के लिए आए, ऐसा मैंने सुना है। सार्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं कि जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, एक श्री कृष्ण चैतन्य बड़े सन्यासी आए हुए हैं और उन्होंने मेरा भी उद्धार किया हुआ है, ऐसे वो बड़े सन्यासी है, वो जो है बहुत दिव्य है। फिर राजा उनसे विनती करता है, थोड़ी मेरी भी भेंट करा दो ना उनसे। तो सार्वभौम कहते हैं कि देखो, वो बहुत बड़े विरक्त सन्यासी है, इस प्रकार से राजा और पॉलिटिशियंस इनसे वो दूर रहते हैं, मिलना मुश्किल है, और अभी तो वो दक्षिण भारत के लिए निकल पड़े हैं, आने के बाद मैं प्रयास करूंगा थोड़ा। तो सार्वभौम ने ऐसा कहने के पश्चात राजा पूछते हैं कि वो क्यों गए वहां पर। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बताते कि देखो, वो प्रचार करने के लिए गए हैं, और जो महान भक्तों का और भगवान का ये स्वभाव होता है कि जहां पर जाते हैं वो उस धन को पवित्र कर देते हैं, तो तीर्थ स्थलों को पवित्र करने के लिए महाप्रभु इस प्रकार से जो है वो दक्षिण भारत यात्रा के लिए गए हैं। तो फिर राजा पूछता है कि आपने उन्हें अनुमति कैसे दी जाने की, रहने देना चाहिए था यहीं पर। फिर सार्वभौम कहते कि देखो, वो परम ईश्वर है, स्वतंत्र सत्ता है उनकी, और इस प्रकार से कई सारे श्लोक बताते हैं, और वो कृष्ण चैतन्य जो है वो भगवान स्वयं कृष्ण है, ऐसा सिद्ध करते हैं। राजा कहते हैं कि देखो, आप बहुत बड़े विद्वान और अनुभवी व्यक्ति हो, मैं आप जैसा कहते हैं उसके ऊपर विश्वास करता हूँ, ठीक है, मान लेते हैं कि वो बहुत बड़े ईश्वर और स्वयं भगवान ही है, लेकिन मेरी विनती करना और मेरी भेंट के लिए कुछ प्रयास करना। सार्वभौम कहते हैं कि महाप्रभु जब आएंगे ना दक्षिण भारत से, तब मैं प्रयास जरूर करूंगा आपकी भेंट कराने का। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, देखो, मिलना होगा कि नहीं वो थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन एक सेवा मैं आपको देता हूँ। राजा पूछते क्या 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 बताइए। तो सार्वभौम बताते, देखो, महाप्रभु जब आएंगे तब उन्हें एक ऐसा स्थान चाहिए जो एकांत में भी है, एकांतवास वहां पर मिले, और वो जगन्नाथ भगवान के नजदीक भी होना चाहिए, ऐसा यदि कुछ है तो आप मुझे बताइए। राजा कहते हैं कि अरे, वो अपना काशी मिश्रा का घर है ना, उनके यहाँ पे रुकवा लो महाप्रभु को। काशी मिश्रा जगन्नाथ मंदिर के ही जो मैनेजमेंट कमेटी शायद होगी उनके वहां पे, उनके सदस्य थे, तो काशी मिश्रा उनके यहाँ पे रुकवा दो। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य विदा लेते हैं राजा से और काशी मिश्रा के पास चले जाते हैं, और काशी मिश्रा से कहते हैं कि श्री कृष्ण चैतन्य जब दक्षिण भारत अभी तो आएंगे तब आप उन्हें रुकवा देंगे उन्हें। हाँ, वो तो बहुत खुश हो जाते हैं कि जरूर जरूर, क्यों नहीं, मेरा तो सौभाग्य खुल जाएगा। तो इस प्रकार से उनका वार्तालाप हुआ था। तो अभी तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत से आ गए हैं, तो दक्षिण भारत से जब आए तब सारे भक्त मिलने के लिए उत्सुक थे। तो सारे भक्त सार्वभौम भट्टाचार्य से कहते कि हमें मिलना है महाप्रभु से। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते कि जरा धीरज धरिए, कल आप काशी मिश्र के घर पे आ जाना, महाप्रभु वहां पर मिलेंगे। तो जब दक्षिण भारत से महाप्रभु आने के पश्चात सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को जगन्नाथपुरी जगन्नाथ भगवान दर्शन करने के लिए लेके जाते हैं, और वहां से फिर वो सीधा काशी मिश्र के घर पर आ जाते हैं। जैसे महाप्रभु काशी मिश्र के घर पर पहुंचते, काशी मिश्र अपने संपूर्ण परिवार के साथ भगवान को शरणागत हो जाते हैं, और उस समय चैतन्य महाप्रभु एक अद्भुत कार्य करते हैं। वो काशी मिश्र को अपना चतुर्भुज रूप दर्शाते हैं, और फिर काशी मिश्र को आलिंगन करते हैं, और काशी मिश्र प्रेम में मदमस्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो वो काशी मिश्र, उसका भी महाप्रभु उन्हें भी बहुत ऊंचे लेवल के भक्त बना देते हैं। तो अभी सारे भक्त तो उत्सुक थे, तो सारे भक्त आ गए काशी मिश्र के घर पर। अभी महाप्रभु एक ऊंचे थोड़े आसन में बैठ गए, और सारे भक्त इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, और घर में इतनी भीड़ थी कि बैठने के लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी कैसे कैसे ना करके भक्त बैठे हुए हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य बात करना प्रारंभ करते हैं, महाप्रभु आपके लिए हमने यह काशी मिश्र का घर निवास स्थान के लिए चयन किया है, क्या आपको अच्छा लगा? महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वह एकांत में था और जगन्नाथ जी के नजदीक भी था। महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे यही देह तोमा सब आकार, यही तुम्ही कह से सम्मत आमार। ये मेरा देह मेरा नहीं है सार्वभौम, ये मेरा देह आपका ही है, आप जहां चाहे इस देह को रख सकते हैं, जो भी आप करेंगे वो मुझे सम्मत है। तो इस प्रकार से जो सारे भक्त जिस प्रकार से चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बारिश की बूंद की इंतजार करता रहता है, उसी प्रकार से सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत से पुनः आने की राह देख रहे थे। सारे भक्तों को भी महाप्रभु मिले हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य एक एक करके सारे भक्तों की पहचान करा देते हैं महाप्रभु से। महाप्रभु ये है जनार्दन, जो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े सेवक हैं, और जब जगन्नाथ जी के विग्रह नए परिवर्तित होते हैं तो ये मदद करते हैं, ये सेवा देते हैं। तो इस प्रकार से हर एक भक्त का नाम, उस भक्त की सेवा क्या है जगन्नाथपुरी में, उन सबका विस्तार से वर्णन जो है वो सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु को बताते हैं। इस प्रकार से कृष्णदास, प्रद्युम्न मिश्र, शिकी माहिती, मुरारी माहिती, चंदनेश्वर, सिंहेश्वर, विष्णुदास, परमानंद, प्रहरराज, इन सबको जो है वो परिचय होता है। ऐसे कई सारे भक्त है और, तो इन सबका परिचय होने के पश्चात महाप्रभु सबको आलिंगन करते हैं और बहुत प्रेम से उनका आदान प्रदान जो है वो वहां पर होता है। और उसके पश्चात वहां पर भवानंद राय अपने चार पुत्रों को लेके वहां पर उपस्थित होते हैं। तो जैसे भवानंद राय आते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, ये है भवानंद राय, रामानंद राय इनके पिताजी। जैसे महाप्रभु सुनते हैं रामानंद राय के पिताजी, वहां पर खड़े हो जाते हैं और आलिंगन करते हैं और दोनों के नयनों से अश्रु प्रवाहित होते हैं प्रेम में। और महाप्रभु कहते हैं कि जिस व्यक्ति का लड़का रामानंद राय है, उस लड़के की ख्याति इस मर्त्य लोक से भी ऊपर तक पहुंचेगी और यहां पर उनका गुणगान करना संभव नहीं है। ऐसे महान भक्त, मैं दक्षिण भारत गया था कुछ समय पश्चात, रामानंद राय यहाँ पर आने वाले हैं, मैंने बुलाया है उनको, मैंने कहा है उनको, आपको यदि याद होगा पिछले अध्याय में हमने देखा था, महाप्रभु जब रामानंद राय से मिले थे, महाप्रभु कहे थे कि आप इस्तीफा दे देना और आ जाना, और रामानंद राय ने क्या कहा था, आप चले जाइए आगे, 10 दिन के बाद मैं आ जाऊंगा। तो महाप्रभु अभी इन्हें बता देते हैं उनके पिताजी भवानंद राय इनको कि थोड़े समय पश्चात रामानंद राय भी आने वाले यहाँ पर। तो भवानंद राय कहते हैं कि मेरा एक लड़का है वाणीनाथ, इसको आपकी सेवा में रख लीजिए, आपकी आज्ञा का पालन करेगा, जो बोलेंगे वो सेवा हमेशा करेगा। तो महाप्रभु वाणीनाथ को अपने साथ रख लेते हैं और महाप्रभु भवानंद राय से कहते हैं कि आप जो है वो पांडु महाराज के समान है, आपकी पत्नी कुंती महारानी है और आपके 5 पुत्र जो है वो 5 पांडवों के समान है और आप मेरे नित्य दास है। तो इस प्रकार से उनका महाप्रभु आलिंगन करते हैं और वहां से फिर वो विदा ही लेते हैं। फिर इस प्रकार से सारे भक्त चले जाने के पश्चात उनके निकटवर्ती पार्षद वहां पर होते हैं, नित्यानंद, जगदानंद आदि। उसी समय महाप्रभु काल कृष्णदास को बुला लेते हैं, बुलाओ काल कृष्णदास को, कहां पर है वो, गुस्से में। तो काल कृष्णदास वहां पर आ जाता है, सारे भक्त भी परेशान, क्या हो रहा है। महाप्रभु सारा वृत्तांत दक्षिण भारत यात्रा का सुनाते हैं कि किस प्रकार से भट्ट थरी लोगों के यहाँ पर ये स्त्रियों के प्रति और धन के प्रति आकर्षित होके मेरा संग छोड़ के चला गया था, कैसे तो मैं बचा के उसको यहां पर लेके आया हूं, अभी मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, अभी मैं इसका त्याग कर रहा हूं, इसे जो चाहे वो करने के लिए कह दीजिए आप। जैसे ही काल कृष्णदास सुनता है कि महाप्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है और महाप्रभु बोलते हैं कि मेरा मुंह भी नहीं देखना इसके आगे चल के, वहीं पर काल कृष्णदास रोने लगता है। एतशुनी कृष्णदास कांदीते लागिला, मध्यान्न करीते महाप्रभु चला गेला। जब जैसे सुनते काल कृष्णदास कि मेरा त्याग कर दिया है, काल कृष्णदास वहीं पर कांदीते लागिला, जोर जोर से रोने बिलगने लगते है। महाप्रभु बिना उनकी तरफ देखे आगे, मध्यान्न के भोजन का समय हो जाता है उसके लिए वो वहां से निकल पड़ते हैं। बाकी सारे भक्त अभी परेशान हो जाते हैं, अभी क्या करें। तो नित्यानंद, आपको पता है 4 भक्त महाप्रभु के साथ जो आए थे वही अभी यहाँ पर है, नित्यानंद, जगदानंद, दामोदर और मुकुंद। वो सोचते हैं कि हमें एक व्यक्ति को तो बंगाल भेजना है क्योंकि महाप्रभु अभी दक्षिण भारत आए हुए है, तो बंगाल समाचार भेजना है कि महाप्रभु अभी यहाँ पर आए हुए हैं, आप सब लोग महाप्रभु को मिलने के लिए आ सकते हैं, तो किसको भेजा जाए कि हम लोग काल कृष्ण को ही भेजते हैं, ऐसा वो विचार करते हैं। और फिर वो महाप्रभु के पास जाते हैं चार जन और महाप्रभु से पूछते हैं कि महाप्रभु हमें बंगाल में एक व्यक्ति को भेजना है जो संदेशा वहां पर पहुंचाए कि आप यहाँ पर आए हुए हैं, मिलने के लिए आ सकते हैं। महाप्रभु कहते हैं आपको जो चाहिए वो करो, लेकिन वो ये नहीं बताते कि हम लोग काल कृष्णदास को भेजने वाले हैं। वो चुपचाप ठीक है महाप्रभु जैसे आपकी आज्ञा हम लोग भेज देंगे किसी को, ऐसा बोल के वो कालकृष्ण को बुलाते हैं और कालकृष्ण को कहते हैं कि कालकृष्ण तुम्हें बंगाल जाना है, समाचार देना है सबको, और ढेर सारा जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद देते हैं उनके साथ में बंगाल के भक्तों के लिए, आप प्रसाद बांटिए और समाचार दे दीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं भगवान भी जिस व्यक्ति का त्याग कर देते हैं, भगवान के भक्त कभी भी त्याग नहीं करते हैं, इसलिए हमें सदैव भगवान के भक्तों की संगति में रहना चाहिए। और इसलिए रामानंद राय को जब पूछा गया था महाप्रभु के द्वारा कि सबसे बड़ा दुख कौन सा है, सबसे बड़ी आपत्ति कौन सी है, तब उन्होंने जवाब दिया था कि भक्तों से विरह महसूस करना यह सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ी आपत्ति है। तो उन भक्तों ने कालकृष्णदास को सेवा में लगाया और कालकृष्णदास इस प्रकार से जगन्नाथपुरी का ढेर सारा प्रसाद लेके अभी बंगाल की तरफ, नवद्वीप की तरफ जाते हैं। वो जाते हैं, वहां पर शची माता से मिलते हैं, शची माता को जगन्नाथपुरी का प्रसाद देते हैं, चैतन्य महाप्रभु की दक्षिण भारत यात्रा का कुछ वृत्तांत भी सुनाते हैं। इस प्रकार से वो अद्वैताचार्य को मिलते हैं, शिवानंद सेन, श्रीवास पंडित, इन सबको मिलते हैं, हरिदास ठाकुर, और ये सारे भक्त अद्वैताचार्य के घर पे एकत्रित आके महाप्रभु आए हुए है ये समाचार सुन के इतने आनंदित हो जाते हैं कि तीन दिन का महोत्सव अद्वैताचार्य के घर पे होता है, कथा कीर्तन कि महाप्रभु आए हुए हैं अभी दक्षिण भारत यात्रा से पुरी में। तो सारे ये बंगाल के भक्त मतलब शांतिपुर में जो अद्वैताचार्य के घर पे थे वो सारे जाते हैं अभी शची माता के पास, उनका आशीर्वाद वहां पर ग्रहण करते हैं। और फिर उनके साथ साथ कुलीन ग्राम के जो है वो सत्यराज खान और रामानंद वो भी उन्हें ज्वाइन हो जाते हैं, और श्रीखंड के मुकुंद, नरहरि और रघुनंदन ये भी उन्हें ज्वाइन हो जाते हैं। और वो अभी निकलना शुरू करने वाले थे कि अभी महाप्रभु के पास जाएंगे, मिलेंगे, उसी बीच परमानंदपुरी वहां पर पहुंच जाते हैं। आपको याद है नवे अध्याय में हमने चर्चा की थी कि परमानंदपुरी को महाप्रभु मिलते हैं दक्षिण भारत यात्रा में। परमानंदपुरी ने महाप्रभु से कहा था कि मैं जो हूं वो जगन्नाथपुरी जा रहा हूं और वहां से मैं बंगाल जाऊंगा, तो महाप्रभु ने कहा था कि आप वापस जगन्नाथपुरी आ जाइए। तो परमानंदपुरी को ये याद था कि महाप्रभु ने मुझे बुलाया है। तो परमानंदपुरी नवद्वीप में कुछ समय के लिए शची माता इनके घर पर रहे, वहां पर प्रसाद आस्वादन किया, कीर्तन आदि किया, और वहां से वो कमलाकांत नाम के एक भक्त को लेके निकल पड़ते हैं जगन्नाथपुरी की ओर महाप्रभु से मिलने के लिए। और परमानंदपुरी जगन्नाथपुरी में पहुंच जाते हैं और महाप्रभु से मिलते हैं। महाप्रभु उनको प्रणाम करते हैं, आलिंगन करते हैं और दोनों प्रेमावेश में कीर्तन करना प्रारंभ कर देते हैं। परमानंदपुरी महाप्रभु से कहते हैं कि आपने बुलाया था तो इसलिए मैं आ गया हूं, और ये सारे बंगाल से भक्त भी आने वाले हैं, लेकिन वो दिरंगाई कर रहे थे, धीरे धीरे निकल रहे थे, तो इसलिए मैं कमलाकांत को लेके आगे आ गया। जैसे होता है ना कि बहुत बड़ा ग्रुप यदि कहां पर जाना है तो एक भक्त बोलता है मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मेरा ये रह गया, तो इस प्रकार से लेट हो जाता है। तो इस प्रकार से परमानंदपुरी बोले कि उनको लेट हो जाएगा इसलिए मैं पहले ही निकल के आ गया अकेला। तो महाप्रभु ने अपने जहां पर महाप्रभु निवास कर रहे थे काशी मिश्रा के घर पर, वहीं पर एक कमरा परमानंदपुरी को दे दिया और कहा कि आप यहीं पर रहे। और इस प्रकार से परमानंदपुरी महाप्रभु के साथ हमेशा वहीं पर ही निवास किए। उसके पश्चात स्वरूप दामोदर आते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। अभी बंगाल के भक्त वहां से निकले हैं लेकिन वो मिले नहीं, बंगाल के भक्त महाप्रभु को मिलेंगे अगले अध्याय में। तो अभी यहीं के जो दूसरे दूसरे भक्त है परमानंदपुरी मिल गए, अभी स्वरूप दामोदर आ जाते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। कौन है ये स्वरूप दामोदर? स्वरूप दामोदर ये नवद्वीप में ही रहने वाले थे। इनका पूर्व नाम था पुरुषोत्तम आचार्य। जब महाप्रभु ने सन्यास लिया तो ये पुरुषोत्तम आचार्य भी अपने आप को रोक नहीं पाए और ये भी वाराणसी चले गए सन्यास लेने के लिए। तो वहां पर उन्होंने सन्यास स्वीकार किया और उनके गुरु थे चैतन्यानंद भारती, उनसे उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। सन्यास ग्रहण तो किया लेकिन उन्होंने गेरुआ वस्त्र और संन्यास का नाम जैसे भारतीय तीर्थ ऐसा नाम नहीं स्वीकार किया। उस काल में केवल सन्यासी व्यक्ति को ही गेरुए वस्त्र यानी भगवे वस्त्र दिए जाते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके आगे चल के प्रभुपाद इनके द्वारा जो है वो ब्रह्मचारियों को भी गेरुए वस्त्र प्रदान करने की प्रथा प्रारंभ हुई। उसके पूर्व ब्रह्मचारियों को गेरुए वस्त्र नहीं, वो केवल सन्यासियों को ही पहनने का अधिकार था। तो इस प्रकार से जब पुरुषोत्तम आचार्य इनका जब सन्यास हुआ, तब उन्होंने जो है वो अपना ब्रह्मचारी नाम स्वरूप ही कंटिन्यू किया, गेरुए वस्त्र नहीं धारण किए, इतने वो नम्र थे। और उनका जो पूर्व नाम था स्वरूप, वही उन्होंने रखा, तो इसलिए वो स्वरूप दामोदर वो फिर अभी महाप्रभु से मिलने के लिए आते हैं। बहुत ही पंडित विद्वान और महाप्रभु के निकटवर्ती ये मित्र थे। पांडित्यर अवधि वाक्य नाही कारो सने, निर्जने रहे लोक सब नहीं माने सब नहीं जाने। पांडित्यर अवधि, पांडित्य की सीमा थी, इतने इतने निपुण थे और वाक्य नाही कारो सने, किसी से बात नहीं करते थे। निर्जने रहे, ऐसे एकांतवास में रहते थे कि लोगों को पता भी नहीं चलता था कि स्वरूप दामोदर कहां पे रह रहे, इतने वो एकांतवास पसंद करते थे। कृष्ण रस तत्व वेत्ता देह प्रेम रूप साक्षात महाप्रभु द्वितीय स्वरूप। तो इस प्रकार से जो है वो कृष्ण रस तत्व वेत्ता, कृष्ण रस के तत्व को वो बहुत अच्छे से जानते थे, वेत्ता थे। देह प्रेम रूप, और उनका देह जो है वो मानो साक्षात प्रेम से ही बना था, और साक्षात महाप्रभु द्वितीय स्वरूप, महाप्रभु के द्वितीय अंग के समान ही जो है वो थे। इतने होशियार थे वो, हमेशा महाप्रभु के साथ में आगे चल के रहेंगे। जिस किसी ने कोई भी रचना की है, कुछ श्लोक लिखा है, कुछ ग्रंथ लिखा है, कुछ अध्याय लिखा है, कविता लिखी है, वो महाप्रभु को जब वो सुनाने के लिए लोग आते थे, सबसे पहले उनको वो सब कुछ स्वरूप दामोदर इनको सुनाना पड़ता था। स्वरूप दामोदर यदि अप्रूव करते तो फिर महाप्रभु सुनते थे, स्वरूप दामोदर इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया तो महाप्रभु उसे नहीं सुनते थे। तो इस प्रकार से जो है वो स्वरूप दामोदर उनकी ख्याति थी, इतने प्रगाढ़ पंडित। और तीन प्रमुख आचार्य और उनके किताबों को महाप्रभु को वो हमेशा सुनाया करते थे। विद्यापति चंडीदास श्री गीत गोविंद यही तीन गीते करान प्रभुर आनंद। महाप्रभु को आनंद प्रदान करते थे इन तीन गीतों के द्वारा। कौन से गीत? विद्यापति ये लेखक, इनके द्वारा लिखे गए गीत। चंडीदास, इनके द्वारा लिखे गए गीत। और श्री गीत गोविंद, तो इन गीतों को प्रस्तुत करके महाप्रभु को वो हमेशा आनंद प्रदान करते थे। संगीते गंधर्व स्वम शास्त्रे बृहस्पति दामोदर सम आर नाही महामति। संगीते गंधर्व सम, संगीत की विद्या में वो गंधर्व के समान निपुण थे, और शास्त्रे बृहस्पति, शास्त्रों में वो बृहस्पति के समान निपुण थे, इसलिए दामोदर सम आर नाही महामति, दामोदर जैसा कोई महान भक्त जो है वो नहीं था। इतने वो, अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं उनका। शास्त्रीय बृहस्पति, शास्त्रों में वो बृहस्पति के समान थे। तो जैसे ही स्वरूप दामोदर यहां पर आए, स्वरूप दामोदर महाप्रभु के चरणों में झुक जाते हैं और महाप्रभु के वर्णन में एक श्लोक की रचना स्वरूप दामोदर करते हैं, जो चैतन्य चंद्रोदक नाटक में बाद में वर्णित किया गया। तो इतने इतने वो शास्त्रों में निपुण थे। अभी वो क्या श्लोक उन्होंने महाप्रभु के गुणगान में रचा, आप उसे सुनिए, इससे समझ में आएगा कि कैसे वो बृहस्पति जैसे होशियार रहेंगे। हे लो धूनित खेदया विषदया प्रेम मील दामोदया साम्य शास्त्र विवादया रसदया चित्तार्पितोन्मादया शश्वत भक्ति विनोदया समदया माधुर्य मर्यादया श्री चैतन्य दया निधे तव दया भूयाद मंदो दया 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 दया, दया। ऐसा शब्द आ रहा है कि वो महाप्रभु से कहते हैं कि हे महाप्रभु, आपकी जो दया है, खेद है, अरे विषाद हृदय में होते हैं, जो शोक होते हैं उन सबको धो डालती है। विष दया जिसे भी स्पर्श करती है उसको पवित्र बना देती है। प्रोन्मील मोदया ये दिव्य आनंद की जागृति कराती है। साम्यत शास्त्र विवादया, जो सारे शास्त्रों के विवाद है उनको नष्ट कर देती है। रसदया चित्तार्पितोन्मादया, हमारे चित्त में अलग अलग रसों का आस्वादन कराती है। शश्वत भक्ति विनोदया समदया, भावपूर्ण भक्ति का जो है वो प्रकट करा देती है हृदय के अंदर। माधुर्य मर्यादया, ये माधुर्य भक्ति का सबसे ऊंचा स्तर है। श्री चैतन्य दया निधे, हे महाप्रभु आप दया के सागर है। तव दया भूयाद मंदोदया, आपकी दया मेरा सौभाग्य को उदय कराए, ऐसे महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर श्लोक की ये रचना करते हैं स्वरूप दामोदर, और फिर महाप्रभु उन्हें आलिंगन करते हैं और दोनों फिर प्रेमन्मत्त होके अचेत अवस्था में गिर पड़ते हैं, और पुनः सचेत जब हो जाते हैं तब महाप्रभु स्वरूप दामोदर इनसे कहते हैं, तुम्ही ये आसीबे आजी स्वप्ने ते देखिल भाल हईल अंध ये न दुई नेत्र पाइल, आज मैंने सपने में देखा था कि आप मुझे यहाँ पर आ गएंगे और मिलेंगे। भाल हईल, अच्छा हो गया आप आ गए। जिस प्रकार से अंधे व्यक्ति को दो आंखें मिल जाती है उस प्रकार से मुझे आप मिल गए हैं। मतलब महाप्रभु स्वरूप दामोदर को अपनी आंखों के समान देख रहे थे और स्वयं को जो है वो अंधा मान रहे थे। और फिर स्वरूप दामोदर कहते हैं कि मुझे क्षमा कर देना कि मैं आपको छोड़ के कहीं और चला गया था, वो वाराणसी में संन्यास लेने के लिए चले गए थे, तो मुझे क्षमा कर देना और धन्यवाद आपने अभी मुझे यहाँ पे आकर्षित करके आपके यहाँ पे आश्रय दिया है। तो इस प्रकार से स्वरूप दामोदर इनको भी महाप्रभु एक अलग एकांत जगह पर कमरे की व्यवस्था कर देते हैं जहां पर एकांत है और कोई उन्हें विचलित नहीं करे। दूसरे दिन जब महाप्रभु बैठकर सारे भक्तों के साथ चर्चा कर रहे थे, कृष्ण कथा हो रही थी, उसी समय गोविंद वहां पर आ जाते हैं और गोविंद स्वयं अपना परिचय देना प्रारंभ कर देते हैं महाप्रभु के सामने आके। महाप्रभु मैं गोविंद हूं, ईश्वरपुरी का सेवक मैं रहा था, और जब ईश्वरपुरी इस धरातल से जाने का समय आ गया तब उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि आप कृष्ण चैतन्य इनकी शरण ग्रहण करो और उनकी सेवा करना। सार्वभौम भट्टाचार्य वहीं पर नजदीक बैठे हुए थे महाप्रभु के साथ में। सार्वभौम भट्टाचार्य हमें पता है छठे अध्याय में हमने देखा कैसे तार्किक थे वो पहले, लेकिन अभी भक्त बने थे। सार्वभौम भट्टाचार्य बीच में ही बोलना प्रारंभ कर देते महाप्रभु से कि ये ईश्वरपुरी इतने बड़े व्यक्ति लेकिन एक शूद्र को अपने सेवक के रूप में रखा, ऐसा कैसे संभव है। तो फिर महाप्रभु बोलते है कि देखो सार्वभौम, भगवान कृष्ण और उनके जो बड़े भक्त है वो स्वतंत्र होते हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, भगवत प्रेम के जो वश में होता है उन्हें इस प्रकार से नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। ईश्वरेर कृपा जाति कुलादि न माने, विदुरेर घरे कृष्ण करिला भोजने। जो भगवान कृष्ण और उनके जो बड़े भक्त होते है वो कृपा जो किस किस को देते है वो जाति और कुल इसको नहीं देखते है। जिस प्रकार से वो दाखला देते महाप्रभु कि कृष्ण जैसे विदुर के घर पे भोजन ग्रहण करने के लिए गए, तो इस प्रकार से कुल और जाति इसका विचार महानुभाव नहीं करते हैं। और जो गोविंद आया था वो भी उनकी चर्चा सुन रहा था कि ये लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। फिर महाप्रभु अभी सार्वभौम भट्टाचार्य को उल्टा प्रश्न पूछते हैं कि देखो अभी मेरे पास एक समस्या है, क्योंकि सार्वभौम जो है वो भी बृहस्पति के समान, वो भी होशियार। महाप्रभु प्रश्न पूछते, देखिए मेरे सामने अभी एक समस्या है। समस्या ये है कि ये गोविंद यहाँ पर आया है, ये गोविंद कह रहा है कि ये ईश्वरपुरी का सेवक था। ईश्वरपुरी मेरे कौन थे? मेरे गुरु थे ईश्वरपुरी। तो अभी मेरे गुरु का सेवक, तो इससे मैं सेवा कैसे स्वीकार करूं, क्योंकि ये मेरे गुरु का सेवक है, वो पद गुरु ही रख सकते हैं। तो ये गुरु की सेवा में था तो मैं इससे अभी सेवा नहीं स्वीकार कर सकता, लेकिन ईश्वरपुरी मेरे गुरु ने आज्ञा दी है इसे कि तू जाके चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर, तो अभी मैं क्या करूं, आप बताइए शास्त्र क्या कहते हैं। सार्वभौम क्योंकि पंडित थे तो महाप्रभु उनसे पूछते बताइए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य कहते कि देखो मेरे विचार से गुरु आज्ञा बलवान होती है, तो गुरु की आज्ञा का जो है वो पालन करना चाहिए। फिर इसलिए महाप्रभु अभी गुरु आज्ञा मतलब ईश्वरपुरी ने आज्ञा दी थी, इसलिए गोविंद का अपने सेवक के रूप में स्वीकार कर लेते है और गोविंद को महाप्रभु आलिंगन कर देते है, और गोविंद को भी कृष्ण प्रेम में गोविंद भी वहां पर मूर्छित होकर गिरता है। और इस प्रकार से गोविंद महाप्रभु के शरण में आ गया और सेवक बन गया। गोविंद न केवल महाप्रभु की, वहां पर जो भी भक्त मिलने के लिए आते थे सारे भक्तों की सेवा नम्रता पूर्वक गोविंद हमेशा जो है वो करते थे। एक दिन महाप्रभु ऐसे ही घर में बैठे थे, वहां पर मुकुंद दत्ता आ जाते हैं, समाचार देते कि महाप्रभु आपसे मिलने के लिए कोई ब्रह्मानंद भारती यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि अच्छा, फिर मुकुंद कहते हैं कि क्या मैं उन्हें अंदर लेके आऊं। महाप्रभु कहते हैं नहीं नहीं रुको रुको रुको, उन्हें मत अंदर लेके आओ, वो मेरे से बहुत बड़े हैं, मैं उन्हें मिलने के लिए बाहर जाऊंगा। तो महाप्रभु ऐसे ही बाहर जाते हैं, देखते हैं ब्रह्मानंद भारती वो मृगचर्म पहन के आए हुए थे। तो महाप्रभु दुखी हो जाते, महाप्रभु देखा अनदेखा किया और चिल्लाने लगते हैं, मुकुंदत कहाँ है ब्रह्मानंद भारती, कहाँ है ब्रह्मानंद भारती। मुकुंदत कहते देखो आपके सामने वो बैठे हैं, नहीं नहीं ये ब्रह्मानंद भारती नहीं हो सकते, ब्रह्मानंद भारती ऐसे मृगचर्म पहन के थोड़े आएंगे। तो जब ब्रह्मानंद भारती सुनते हैं तो वो महाप्रभु का मनोभाव जान लेते हैं और वो सोचते हैं कि मैं केवल दिखावे के लिए और प्रतिष्ठा पाने के लिए शायद मृगचर्म पहना हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर अचानक वो क्या कर लेते हैं, एक सन्यास वस्त्र बुलाया जाता है वहां पर, वो एक सन्यासी के वस्त्र धारण कर लेते हैं, मृगचर्म का त्याग कर देते हैं और प्रण लेते हैं कि इसके बाद जाके मैं कभी मृगचर्म नहीं पहनूंगा। जैसा मैंने आपको होमवर्क दिया था कल, आपको याद होगा कि हमारे अंदर झांक कर देखना है क्या क्या चल रहा है, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। मुझे पता है जब से होमवर्क शब्द सुना होगा कुछ भक्तों ने तय कर लिया होगा कि हम नहीं करेंगे। कुछ भक्तों ने भक्तों उनको याद नहीं रहा होगा, कुछ भक्तों को याद रहा होगा, वो सोचते होंगे करेंगे करेंगे लेकिन समय नहीं मिला होगा, और कुछ भक्त होंगे जिन्होंने करने का प्रयास भी किया होगा, और कुछ भक्त होंगे जिन्होंने सही में किया होगा निश्चय करके कि मुझे ये होमवर्क करना है। जो रामानंद राय के प्रश्न उनके जवाब स्वयं क्या दे सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्मानंद भारती वो स्वयं का अवलोकन करते हैं कि मैं शायद ये प्रतिष्ठा के लिए पहना हुआ हूँ मृगचर्म, महाप्रभु को समझ में आ गया है मुझे इसका त्याग कर देना चाहिए। ब्रह्मानंद भारती ने तुरंत त्याग कर दिया, सन्यासी के वस्त्र पहन लिए और महाप्रभु फिर उन्हें आलिंगन देते हैं, महाप्रभु ने शरणागत हो जाते हैं। ब्रह्मानंद भारती कहते हैं कि इसके आगे मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी कार्य जो है वो नहीं करूंगा। फिर इस प्रकार से महाप्रभु उन्हें प्रणाम करते हैं और उनके बीच में वार्तालाप शुरू हो जाता है। ब्रह्मानंद भारती महाप्रभु से कहते हैं, सांप्रतिक दुई ब्रह्म इहा चल अचल, जगन्नाथ अचल ब्रह्म तुमी तस अचल। यहां पे मैं दो ब्रह्म देख रहा हूं, एक चल ब्रह्म और दूसरा अचल ब्रह्म। जगन्नाथ भगवान जो है वो अचल ब्रह्म है और आप चल ब्रह्म है। अजन्म करीन मुई निराकार ध्यान, तोमा देखी कृष्ण हैल मोर विद्यमान। जन्म से लेकर अभी तक मैं जो हूँ वो निराकार ब्रह्म का ध्यान किया है, लेकिन अभी मैं जब आपसे मिल रहा हूं तो मुझे कृष्ण विद्यमान हो गए ऐसा लग रहा है। और इस प्रकार से जो है वो उनका चर्चा वहां पर चलता है। ब्रह्मानंद भारती के लिए भी एक निवास के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था महाप्रभु प्रबंध कर देते हैं, ब्रह्मानंद भारती भी इसी प्रकार से वहीं पर रहते हैं। फिर इसके बाद आगे चल के रामभद्र आचार्य, भगवान आचार्य ये सारे लोग आते हैं, काशीश्वर आते हैं। काशीश्वर जो महाप्रभु को हमेशा जगन्नाथ जी का दर्शन कराने के लिए लेके जाते थे, और जब भी कोई लोग वहां पर एकत्रित आ जाते हैं, महाप्रभु के रास्ते में आ जाते थे, तो उन लोगों को महाप्रभु से रास्ता दूर करने के लिए लोगों को दूर किया करते थे, ऐसे थे ये काशीश्वर। तो ये उनकी जो है वो हमेशा सेवा थी। इस प्रकार से नदी जैसी समंदर में जाके मिलती है, उसी प्रकार से कई सारे भक्त महाप्रभु को अभी मिल रहे थे। इस प्रकार से जो है वो दसवां अध्याय यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो दसवें अध्याय में हमने देखा किस प्रकार से परमानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, गोविंद, स्वरूप दामोदर और राजा प्रताप रुद्र की भगवान से मिलने की इच्छा, लेकिन अभी तक वो इच्छा पूरी नहीं हुई है। अभी हम लोग दसवां अध्याय का पहला श्लोक हमारी प्रथा के अनुसार, जिसमें प्रारंभ में ही कविराज गोस्वामी सारी लीला का सारांश एक श्लोक में बता देते हैं। देखिए अभी कविराज गोस्वामी इतना सुंदर तरीके से वर्णन करते हैं कि भक्तों को कैसे महाप्रभु मिले, और दसवें अध्याय का शीर्षक कविराज गोस्वामी लिखते हैं भक्तों का मिलन। तम वंदे गौर जलदम स्वस्य यो दर्शनामृतैः विच्छेदावग्रह मलाना भक्त शस्यान्य जीवयत। इतना सुंदर श्लोक रचना किया है उन्होंने। वो कहते हैं कि तम वंदे गौर जलदम, उन चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। जलदम, जल करता है पानी, जलदम मतलब जो जल देता है, कौन जल देता है, बादल। तो चैतन्य महाप्रभु एक बादल के समान है और भक्तों की तुलना करते हैं वो शस्य मतलब धन्य। तो ऐसा एक धन्य है जो सूखा हुआ है, तो जब बादल से बारिश हो जाती है तो उस धन्य में जीवन आ जाते हैं। उसी प्रकार से ये सारे भक्त चैतन्य महाप्रभु के विरह से विच्छेद अवग्रह म्लान, जो विच्छेद महाप्रभु से जो विरह था उस विरह को सहन नहीं कर पा रहे थे, मानो अपना अभी जीवन गंवाने वाले थे, लेकिन उसी समय ये चैतन्य महाप्रभु का कृपा रूपी बादल आया और उस वो मिलन की वर्षा हुई और सारे भक्तों की जान बच गई। तो इस प्रकार से जो है वो बहुत सुंदर कविराज गोस्वामी यहाँ पर जो है वो मिलन का वर्णन किए हुए है। और अभी 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है बेड़ा संकीर्तन, मतलब अभी क्या होगा इसमें, इस अध्याय में बंगाल से जो भक्त निकले थे वो अभी महाप्रभु को यहाँ पर मिलेंगे और वो कीर्तन करेंगे। ये अध्याय है 11वां जिसका शीर्षक है बेड़ा संकीर्तन। अरदिन सार्वभौम कहे प्रभु स्थाने, अभयदान देह यदि करे निवेदने। सार्वभौम भट्टाचार्य महाप्रभु के पास आते हैं और कहते हैं कि यदि आप मुझे अभय प्रदान करें तो कुछ दान देंगे, मतलब आप मुझे डांटेंगे तो नहीं ना। महाप्रभु कहते हैं अरे डरो मत, जो चाहिए मांग लो, कुछ भी मांग सकते हो, योग्य होगा तो पूरा कर दूंगा, अयोग्य होगा तो ठुकरा दूंगा, उसमें क्या बड़ी बात है, मांगो। सार्वभौम कहे ए प्रताप रुद्र राय, उत्कंठा हाचे तो मां मिली बारे चाय। ये राजा है जगन्नाथपुरी के, उनके अंदर बहुत सारी उत्कंठा है उनके मन में, वो आपको मिलना चाहते हैं, कुछ हो सकता है। फिर महाप्रभु कहते हैं अपने हाथ से कान बंद कर लेते, कहते विष्णु 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 नारायण नारायण ऐसा कभी संभव नहीं है, मैं विरक्त सन्यासी हूं, स्त्रियों से मिलना और पॉलिटिशियंस राजा से मिलना मेरे लिए विष ग्रहण करने के समान है, मैं उनसे बिल्कुल नहीं मिल सकता। सार्वभौम कहते कुछ हो सकता है, प्लीज प्लीज कृपया करके मिलिए ना। महाप्रभु गुस्सा होकर कहते कि वापस ऐसी विनती की तो मैं यहां से चला जाऊंगा। अभी इतने समय के पश्चात महाप्रभु यहाँ पे आए थे, महाप्रभु गुस्सा हो जाए, सार्वभौम को पता चल जाता है अभी थोड़ा मामला गंभीर है। सार्वभौम कहते हैं क्षमा क्षमा क्षमा, चुप करके वहां से जो है वो भाग जाते हैं डर कर। और फिर अभी रामानंद राय इनका पुरी में आगमन होता है। रामानंद राय पुरी में आते हैं, महाप्रभु से मिलते हैं। महाप्रभु हमें पता है रामानंद राय तो बहुत बड़े भक्त है, महाप्रभु ने आलिंगन देते हैं, दोनों का प्रेम से जो है वो चर्चा चलता है और रामानंद राय अपना वार्ता संपूर्ण सुनाते हैं कि जैसे आपकी आज्ञा थी, आपने कहा था कि आप रेसिग्नेशन दे देना, मैंने राजा को रेसिग्नेशन दे दिया है और गुड न्यूज है कि मेरी छुट्टी सैंक्शन हो गई है, मैं अभी राजा के सेवक से, राजा को जैसे ही मैंने कहा कि मैं चैतन्य महाप्रभु के सेवा में जाना चाहता हूँ, राजा प्रताप रुद्र बहुत खुश हो गए, उन्होंने सिंहासन से उठ के मुझे आलिंगन दिया और कहा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, मुझे भगवान की कृपा नहीं हो रही है लेकिन तुम्हें कृपा हो रही है, तो तुम सेवा में अवश्य चले जाना, और जॉब छोड़ दिया है तो भी चलेगा, पूरी तनख्वाह मैं तुम्हें पेंशन के रूप में देता रहूंगा। तो इस प्रकार से तनख्वाह सारी मुझे अभी पेंशन के रूप में मिलती रहेगी, ऐसा ये राजा है। लेकिन राजा कहने लगा कि मैं देखो कितना दुर्भाग्य हूं, महाप्रभु की कृपा मुझ पर नहीं हो रही है और पता नहीं किस जन्म में मुझे महाप्रभु की कृपा मिलेगी, ऐसा उस राजा ने कहा। तो रामानंद राय भी इनडायरेक्टली राजा की सिफारिश कर रहे थे। फिर महाप्रभु कहते हैं कि देखो आप तो बड़े भक्त हैं, भक्त की किसी के ऊपर कृपा हो जाएगी तो कृष्ण की तो अवश्य उनके ऊपर कृपा हो सकती है। तुमाते ये तो प्रीति होइल राजा रही गुणे कृष्ण तारे करिबे अंगीकार, कि राजा की जो है वो आपके साथ प्रीति हो गई है तो इसलिए कृष्ण जरूर राजा को जो है वो स्वीकार कर लेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। फिर रामानंद राय से मिलते हैं महाप्रभु और पूछते हैं कि आप जगन्नाथ जी का दर्शन करके आ गए। रामानंद राय कहते नहीं, पहले तो मैं आपके दर्शन के लिए आया। महाप्रभु कहते हैं कि अरे तू क्या आदमी है, ये गलत किया, पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करना जाना चाहिए था, बाद में मेरे पास आना चाहिए था। रामानंद राय कहते हैं कि देखो महाप्रभु, जो रथी है वो रथ के ऊपर बैठता है और जहां पर वो ड्राइवर लेके जाएगा वहीं पर वो पैसेंजर, जो ड्राइवर जहां पर लेके जाएगा वहां पर पैसेंजर चला जाता है। इस प्रकार से मेरे पैर मुझे यहां पर लेके गए, मेरा हृदय पर नियंत्रण, मेरा हृदय जो है वो रथी है, पैसेंजर है, और मेरे पैर जो है वो ड्राइवर, वो चालक के समान है। पैर जहां पर लेके जाएंगे वहीं पर हृदय को जाना होता है, मुझे यहां पर लेके आ गए मेरे पैर, मैं क्या करूं, मैं नहीं रुक पाया। इसलिए फिर महाप्रभु कहते हैं ठीक है अब यहां पर आ गए हो, अभी आपके पिताजी, कौन है उनके पिताजी, भवानंद राय और पूरा परिवार। महाप्रभु कहते हैं कि आप जाओ जल्दी से जगन्नाथ जी का दर्शन करो और आपके परिवार वालों को मिलो, बाद में हम लोग जो है वो मिलेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो उनका मिलाप होता है। और राजा अभी कुछ काम के वजह से बाहर गए थे, वो पुनः जगन्नाथपुरी में आते हैं। जगन्नाथपुरी में सार्वभौम भट्टाचार्य को पुनः बुला लेते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य को पूछते हैं कि सार्वभौम क्या हुआ, राजा के साथ भेंट हो सकती है? महाप्रभु ने तो पहले ही सार्वभौम को बोल दिया था यदि वापस विनती करेगा तो मैं चला जाऊंगा। फिर सार्वभौम कहते हैं कि अशक्य लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, महाप्रभु ने बिल्कुल मना कर दिया आपसे मिलने के लिए। राजा फिर अभी परेशान हो जाता है कि राजा कहता है कि अभी मैं क्या करूं, यदि महाप्रभु की कृपा मेरे ऊपर नहीं हुई तो मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगा। सार्वभौम परेशान हो जाते हैं। उधर महाप्रभु को बोलता हूँ मिलो तो महाप्रभु बोलते मैं छोड़ के चला जाऊंगा। इधर राजा को बोलता हूँ नहीं मिल सकते, राजा बोलता है नहीं मिले तो मैं जीवन त्याग कर दूंगा, करूं तो क्या करूं। फिर सार्वभौम राजा को कहते हैं कि देखो आपकी उत्कंठा है अच्छे से तो महाप्रभु जरूर आपको मिलेंगे, और मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। उपाय यह है कि जब महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के समय जब नृत्य करेंगे, नृत्य करने के पश्चात जब वो एक जगह विराम करेंगे, विश्राम करेंगे, तब आप अपना राजा का वेश त्याग कर देना और वहां पर उनके चरणों की सेवा करना और रास पंचाध्याय वहां पर उसका गान करना। महाप्रभु जब सुनेंगे तो महाप्रभु भावावेश में होंगे, महाप्रभु कुछ समझ में नहीं आएगा, वैष्णव कह के आपको वो आलिंगन दे देंगे और आपके ऊपर उस समय महाप्रभु की कृपा होगी। तो इस प्रकार से सार्वभौम आशा दे के वहां से जो है वो निकल पड़ते है। तो इस प्रकार से एक बार वहां पर स्नान यात्रा का आयोजन होता है। स्नान यात्रा हम सब जानते हैं, स्नान यात्रा मतलब जगन्नाथ भगवान को स्नान किया जाता है और उसके पश्चात भगवान बीमार हो जाते हैं और इस प्रकार के बीमारी में उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। वो क्वारंटाइन 14 दिन का होता है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी अभी क्वारंटाइन पीरियड में है 14 दिन, और महाप्रभु क्योंकि उन्हें अभी जगन्नाथ जी का दर्शन ही नहीं हो रहा है तो महाप्रभु बहुत विरह में दुख, जिस प्रकार से गोपियां कृष्ण के विरह में नहीं रह पाती उस प्रकार से महाप्रभु जगन्नाथ जी के अभी विरह में है क्योंकि उन्हें दर्शन नहीं हो रहा है। महाप्रभु विरह में क्या करूं करके वो अलालनाथ चले जाते हैं। दक्षिण भारत यात्रा की यात्रा में महाप्रभु अलालनाथ से आगे गए थे, तो महाप्रभु अलालनाथ पहुंच जाते हैं दुख भरे इसमें। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य वहां पर बुलाने के लिए जाते, महाप्रभु आप कृपया आइए क्योंकि बंगाल से अभी भक्त आएंगे तो जरूर आइए, आप यहाँ पर ही रुकिए। तो महाप्रभु पुनः आ जाते हैं और काशी मिश्रा के घर पे रहते हैं। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा इनका वार्तालाप चल रहा होता है, उसी समय अचानक गोपीनाथ आचार्य वहां पे आ जाते हैं और गोपीनाथ आचार्य संदेश देते हैं सार्वभौम भट्टाचार्यों को कि देखिए बंगाल से 200 भक्त आ गए हैं, जगन्नाथपुरी में पहुंच गए हैं, अभी वो नरेंद्र सरोवर तक पहुंच गए हैं, आगे आ जाएंगे महाप्रभु को मिलने के लिए। देखो 200 भक्त हैं, उनके रहने की और खाने की व्यवस्था करनी होगी हमें। तो फिर राजा कहता है कि देखो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो मंदिर के कार्यकर्ता है उन लोगों को बोल दूंगा तो सारी रहने की और प्रसाद की जो व्यवस्था हो जाएगी। तो सारे बंगाल के भक्त जो आ रहे होते हैं, अभी राजा प्रताप रुद्र कहते हैं कि चलो मुझे दिखाओ कौन कौन आ रहा है, कौन कौन आ रहा है मिलने के लिए। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं चलो छत पे जाते हैं आपके महल के और वहां से हम लोग आपको दिखाएंगे। तो गोपीनाथ आचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य और राजा प्रताप रुद्र तीनों महल के छत के ऊपर चले जाते हैं और छत से वो देख रहे हैं अभी बंगाल से कौन कौन आया हुआ है। सार्वभौम भट्टाचार्य को राजा कहते हैं कि बताओ मुझे कौन है ये। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि देखो मैं छठे अध्याय में भक्त बना हूं अभी। मैं नया भक्त हूं, मैं जानता नहीं हूं बंगाल के ज्यादा भक्तों को, लेकिन ये गोपीनाथ आचार्य नवद्वीप से ही है, ये आपको सब अच्छे से बता सकते हैं कौन क्या है करके। तो इस प्रकार से अभी सबसे पहले महाप्रभु ने पहले ही स्वरूप दामोदर और गोविंद उनके सेवक उनको भेज के रखा था जगन्नाथ जी का भगवान का महाप्रसाद खजा, और माला लेके, महाप्रसाद की माला लेके स्वागत के लिए सारे भक्तों को। राजा जब देखते हैं कि ये दो कौन है, तो सर्व भट्टाचार्य पहले बताते हैं कि ये तो स्वरूप दामोदर है, ये महाप्रभु के बहुत बड़े ये भक्त है और बहुत होशियार है, दिग्गज है, और दूसरे गोविंद है, वो महाप्रभु के निजी सेवक है। और इस प्रकार से बंगाल के भक्त वहां पर अभी प्रवेश किए हैं। सबसे पहले अद्वैताचार्य सामने आ जाते हैं, और फिर गोविंद और स्वरूप दामोदर दोनों अद्वैताचार्य को माला पहनाते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, और गोपीनाथ आचार्य एक एक करके सारे भक्तों का अभी परिचय कराते हैं राजा को। यह है अद्वैताचार्य, ये बहुत बड़े दिग्गज भक्त है, महाप्रभु से उम्र में भी बड़े हैं, और महाप्रभु स्वयं इनका बहुत आदर करते हैं। तो इस प्रकार से अभी अपने आचार्य सारे भक्तों का जो है वो परिचय करा रहे हैं। ये है श्रीवास पंडित, वक्रेश्वर पंडित, गदाधर पंडित, आचार्य रत्न मुरारी गुप्त, हरिदास ठाकुर, ये सब लोगों का परिचय करा देते हैं वहां पर। और गोपीनाथ आचार्य ने सबका परिचय वहां पे दिया, और वहां पर सारे भक्त कीर्तन कर रहे थे। राजा देख के अचंभित हो जाता है, इतना कीर्तन, ऐसा नृत्य और ये सब मिलाप मैंने अभी तक कभी देखा ही नहीं था, इससे अचंभित हो जाते हैं। और फिर सर्वम भट्टाचार्य कहते हैं कि महाप्रभु इसी के लिए तो अवतरित हुए हैं, महाप्रभु ये कृष्ण प्रेम का संचार करा रहे हैं कीर्तन के द्वारा, यही जो है वो असली कृपा है महाप्रभु की, तो ये सारे भक्त इसलिए ये सारा कीर्तन कर रहे हैं। और सारे भक्तगण अभी महाप्रभु के घर की ओर जा रहे हैं, सबका स्वागत हो गया है, काशी मिश्र के घर सब लोग जा रहे हैं मिलने के लिए महाप्रभु को। राजा कहता है कि अरे ये सब चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इनको तो पहले जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाना चाहिए। सर्व मट्टाचार्य कहते हैं कि देखो ये भक्त पहले महाप्रभु से मिलेंगे, उसके पश्चात जाके ये जगन्नाथ जी का दर्शन लेंगे, ऐसे ये विशेष है। राजा कहते हैं कि मैंने देखा वो वाणीनाथ, वो भवानंद राय का लड़का, वो जगन्नाथ जी का सारा महाप्रसाद लेके चैतन्य महाप्रभु के पास लेके गया, शायद वो इन भक्तों के लिए है, ये ऐसा कैसे हो गया। सार्वभौम भट्टाचार्य पूछते कैसा हो गया, वो कहते कि ये सब भक्तगण अभी जगन्नाथपुर में पहुंचे, ये सब इतना प्रसाद लेंगे। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते फिर प्रसाद लेंगे तो क्या, प्रसाद लेंगे ना। राजा कहता कि ऐसा कैसे हो सकता है, धाम में जब कोई व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसे नियमों का पालन करना चाहिए, उसने अपने बाल को मुंडन करना चाहिए, उसने उपवास करना चाहिए, ऐसे नियमों का पालन करना चाहिए सर्वप्रथम। सर्व भट्टाचार्य वो भी शास्त्रों के तो बहुत बड़े पंडित, वह कहते कि देखो ये सब महाप्रभु के प्रेमी भक्त है, और जब महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से प्रसाद बांटेंगे तो किसी की मजाल कोई नहीं कहे उन्हें, महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से बांटते, ये प्रेमी रागानुग भक्त है, इनको शास्त्रों की आज्ञा पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यार कृपा करी करेन हृदय प्रेरण कृष्णाश्रय हय छाड़े वेद लोक धर्म, जिस व्यक्ति को कृपा करे हृदय प्रेरण, भगवान की कृपा होती है और हृदय से प्रेरणा मिलती है और वो कृष्ण का आश्रय ले लेता है, उस व्यक्ति को वेद धर्म और लोक धर्म, सामाजिक धर्म, उनका पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से राजा ने काशी मिश्र और मंदिर के कोई दूसरे सेवक व्यवस्थापन के, उन्हें कह दिया कि जाओ जाके जो 200 भक्त आए हुए हैं उन सब की निवास की आप व्यवस्था करो। और फिर सर्वम भट्टाचार्य अभी वो महल पे थे, वहां से नीचे उतर जाते हैं और फिर राजा को वही छोड़ देते हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य गोपीनाथ आचार्य मिलने के लिए चले जाते हैं इन सारे भक्तों को जो अभी बंगाल से आए हुए हैं। महाप्रभु मिल रहे हैं किस प्रकार से भक्तों को, उनका आदान प्रदान हो रहा है। सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य दूर से ही देखते हैं कैसे इनका जो है वो प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। सारे घर में चले जाते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है और सबका महाप्रभु अभी पहली बार सारे आ रहे दक्षिण भारत यात्रा के पश्चात, सबका महाप्रभु स्वयं स्वागत करते हैं, खुद के हाथ से माला पहनाते हैं और खुद के हाथों से चंदन अर्पण करते हैं। आपन निकटे प्रभु सभा बसाइना, आपने श्री हस्ते सभा रे माल्या गंध दिला, अपने निकट सबको महाप्रभु बिठाते हैं और स्वयं महाप्रभु माला पहनाते हैं और चंदन लगाते हैं। इस प्रकार से स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु सारे भक्तों का स्वागत करते हैं। हमें इस यहां से समझ सकते हैं हम लोग वैष्णव एटिकेट कि किस प्रकार से भक्तों का स्वागत हमारे घर में करना चाहिए। तो इस प्रकार से महाप्रभु स्वयं माला पहरा रहे और चंदन अर्पण करके सारे भक्तों को स्वागत करते हैं। इस प्रकार से आदान प्रदान होता है, सारे भक्तों के साथ व्यक्तिगत महाप्रभु बात करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और सारे भक्त जवाब देते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे पढ़ सकते हैं विस्तार में। अद्वैताचार्य, वासुदेव दत्त, शिवास ठाकुर, शिवानंद सेन, ये सारे भक्त महाप्रभु को जो है वो मिलते हैं। और ये शिवानंद सेन ये भी बड़े दिग्गज भक्त है। शिवानंद सेन जैसे महाप्रभु को मिलते हैं, महाप्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं और एक श्लोक बताते हैं, बहुत सुंदर श्लोक जो शिवानंद सेन इनके द्वारा बताया गया। निमज्जतो अनंत भवार्णवांत चिराय मे कुलमिवासी लब्धः त्वयापि लब्धं भगवान् निदानीम अनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः। निमज्जतो अनंत, हे अनंत भगवान, निमज्जतो, मैं डूब रहा था, किसमें डूब रहा था, भवार्णवम, भवसागर में मैं डूब रहा था, कब से डूब रहा था, और चिराय मे कुलमिवासी लब्धः, आज मुझे आपके रूप में किनारा मिल गया है। समंदर में डूबते हुए व्यक्ति को जैसे किनारा मिल जाए, उस प्रकार से मैं इस भवसागर में डूब रहा था, मुझे आप मिल गए। लेकिन केवल मुझे ही आप नहीं मिले हैं, आपको भी मैं मिला हूं। त्वयापि लब्धं भगवन इदानीम, आज आपको भी कुछ प्राप्त हुआ है मेरे रूप में। कोई कहेगा अरे आपको भगवान प्राप्त हो गए, भगवान को आप कैसे प्राप्त हो गए। वो कहे कि अनुत्तमम पात्रम इदम दयायाः, आपकी दया किसी को देनी है आपको, तो वो दया के लिए आपको एक अच्छा पात्र मिल गया है, क्योंकि आपकी दया हमेशा निचले लोगों को मिलती है। नीच गैव सदा भाति तम चैतन्य प्रभु मजे, महाप्रभु के कृपा का वर्णन करते हुए कविराज गोस्वामी ने एक श्लोक कहा है कि वो कहते हैं कि कृपा सुधा सरिद्यस्य विश्वम आप्लावयन्यपि नीच गैव सदा भाति तम चैतन्य प्रभु मजे। कृपा सुधा सरित्यस्य, कृपा की सुधा, कृपा का अमृत, अमृत रूपी कृपा का, महाप्रभु का जो वर्षा, जो सरिता जो बह रही है, कृपा सुधा सरित्यस्य विश्वम आप्लावयन्तपि, सारे विश्व को आप्लवित कर रही है, डुबा रही है, और बहते 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 कहां जाती है नदी, सबसे नीचे, नीचे गई वसदा भाति तम चैतन्य प्रभु मजे। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं, जिनकी कृपा सबसे नीचे 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 जाके नीचे वाले लोगों को भी मिलती है। तो इस प्रकार से जैसे हम पता है जगाई मदाई तक जाके मिली है। राजा प्रताप रुद्र भी यही कहता था एक्चुअली कि जगाई मदाई को कृपा की थी महाप्रभु ने, लेकिन मेरे ऊपर क्यों नहीं कृपा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से शिवानंद सेन कहते हैं कि मैं भवसागर में डूब रहा था, मुझे किनारा मिल गया आपके रूप में, और आपको दया करने के लिए, दया दिखाने के लिए एक अच्छा पात्र मिल गया है। इस प्रकार से सारे बंगाल से आए हुए भक्त मिल रहे, सबको मिलना होने के पश्चात महाप्रभु ढूंढ रहे, हरिदास किधर है, हरिदास कहाँ है, हरिदास ठाकुर। तो दूर देखते हैं तो हरिदास रास्ते से ही महाप्रभु को दंडवत प्रणाम कर रहे थे, और सारे भक्त वहां से भागते 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 हरिदास ठाकुर के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि महाप्रभु आपको बुला रहे, चलो। हरिदास कहते हैं कि मेरी योग्यता नहीं है, मैं नीच जाति का हूं, मैं नीच कुलीन हूं, मैं अधम हूं, मैं पात्र नहीं हूं, कैसे मैं महाप्रभु को मिलूंगा। तो इस प्रकार से जो है वो हरिदास कहे मुई नीच जाति छार, मंदिरे निकटे आईते मोर नाही अधिकार, मेरा अधिकार नहीं है मंदिर के निकट जाने का, इसलिए आप जाओ महाप्रभु को बताओ कि मुझे एक ऐसा निवास स्थान दीजिए जहां पर एकांतवास हो, और जहां से यदि पुजारी, जगन्नाथ मंदिर के पुजारी यहां से जाए तो मेरा स्पर्श उन्हें न हो, मेरी छाया भी उनके ऊपर नहीं पड़े। ऐसा जब सारे भक्त आके महाप्रभु को बताते हैं, महाप्रभु बहुत संतुष्ट हो जाते हैं, महाप्रभु खुश हो जाते हैं। और फिर काशी मिश्रा और जो मंदिर के व्यवस्थापन वाले थे, जिन्हें राजा ने आज्ञा दी थी, वो वहां पर उपस्थित हो जाते हैं और महाप्रभु से कहते हैं कि महाप्रभु सारे लोगों की निवास की व्यवस्था जो है वो हो गई है। तो फिर उस समय महाप्रभु जो है वो गोपीनाथ आचार्य से कहते हैं कि जाओ आप काशी मिश्र के साथ और सारे लोगों की रहने के लिए व्यवस्था कीजिए। तो हमें पता है जब हम यात्रा में जाते हैं तो तीन चीजों की आवश्यकता हमें होती है, एकोमोडेशन, प्रसादम एंड ट्रैवलिंग। तो अभी वो इंटरनल ट्रैवलिंग यहां पर तो कुछ नहीं है क्योंकि जगन्नाथ मंदिर नजदीक में ही है, तो ट्रैवलिंग का सवाल नहीं है। दो चीजों का सवाल बच जाता है, एक है रहना और दूसरा है प्रसाद। महाप्रभु स्वयं इसकी निगाह रखते हैं, देखिए महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य को कहते हैं कि आप स्टेइंग एकोमोडेशन की व्यवस्था करना इन सबकी, सबको जो चाहिए वैसा रहने के लिए स्थान देना, और वाणीनाथ को कहते हैं कि तुम प्रसाद की व्यवस्था करना जगन्नाथ जी से। पहले ही वाणीनाथ को बोल के रखा था, राजा ने भी कहा था ना वाणीनाथ इतना सारा प्रसाद लेके गया है, तो वाणीनाथ को प्रसाद व्यवस्था का इंचार्ज थे वाणीनाथ जी और गोपीनाथ आचार्य और काशी मिश्र, ये एकोमोडेशन इंचार्ज थे, ये दोनों एकोमोडेशन की व्यवस्था कर देते हैं। तो वाणीनाथ ने सारा महाप्रसाद लेके आया था। अभी महाप्रभु सारे लोगों को कहते हैं कि आप सब लोग जाइए गोपीनाथ आचार्य के साथ और आप अपने अपने निवास स्थानों में रह के आप समुद्र में स्नान करके आइए, और अभी दर्शन बंद होगा तो आप जो है वो कलश का ही दर्शन कर लीजिए, चक्र का दर्शन कर लीजिए और प्रसाद के लिए पुनः यहाँ पर आ जाइए, ऐसा महाप्रभु बताते हैं। तो इस प्रकार से फिर सारे लोग चले गए, महाप्रभु हरिदास ठाकुर से अभी मिलते हैं, महाप्रभु हरिदास ठाकुर को मिलते हैं, हरिदास ठाकुर को आलिंगन करते हैं। महाप्रभु ने जैसे आलिंगन किया हरिदास ठाकुर को, हरिदास ठाकुर करते कहते कि मुझे मत छुइए, मुझे मत छुइए, मैं अपवित्र हूँ। महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे तो मां स्पर्शी पवित्र होइते, तुम्हारा पवित्र धर्म नहीं का आमाते, तुम्हें मैं स्पर्श इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हारे स्पर्श से मैं स्वयं पवित्र हो जाऊंगा, तुम्हारे जैसा पवित्र धर्म मुझ में भी नहीं है, तो मैं स्वयं पवित्र होने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूं, क्योंकि तुम ये जो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जो महामंत्र का कीर्तन कर रहे हो तुम, इसका अर्थ है कि तुम हमेशा वेदाध्ययन कर रहे हो, हमेशा तीर्थों में स्नान कर रहे हो और प्रतिक्षण तुम यज्ञ कर रहे हो, इसके समान है ही है, तो इसलिए मैं तुम्हें आलिंगन दिया और मैं स्वयं शुद्ध हो रहा हूं। इसलिए एक जगह लेके जाते हैं बगीचे के नजदीक, महाप्रभु हरिदास ठाकुर का निवास की व्यवस्था स्वयं करा देते हैं, आप यहाँ पर रहिए, यहाँ से जगन्नाथ जी का आपको ध्वजा और चक्र का दर्शन हो जाएगा और मैं हर रोज आपको मिलने के लिए यहाँ पर आऊंगा और आपके प्रसाद की व्यवस्था भी है, मैं स्वयं करूंगा। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर की व्यवस्था की गई और सारे भक्त जो गोपीनाथ आचार्य अभी लेके गए थे सबको स्नान करने के लिए दर्शन कराने के लिए, वो सारे भक्त वापस आ जाते हैं और सबको अभी प्रसाद वितरण हो रहा है और महाप्रभु खुद के हाथों से अभी सबको प्रसाद वितरण कर रहे हैं। देखिए वैष्णव एटिकेट, अल्प अन्न नाही आई से दीते प्रभुर हाते, दुई तीनेर अन्न देन एको एको पाते। महाप्रभु का हाथ बड़ा है, एक जन को दो तीन लोगों का प्रसाद जो है वो महाप्रभु परोस रहे हैं और उसके साथ साथ उसको खाने की शक्ति भी दे रहे हैं। सबको महाप्रभु ने परोस दिया लेकिन सब कुछ चुप बैठे हैं, कुछ कोई कुछ खाने रहा। महाप्रभु बोले ऐसा क्या हो रहा है? सर्व भट्टाचार्य कहते हैं कि महाप्रभु जब तक आप खाने के लिए नहीं बैठेंगे इसमें से कोई खाएगा नहीं। फिर परमानंद पुरी ब्रह्मानंद भारती जो सब सन्यासी कैटेगरी थे उन सबको अलग से प्रसाद की व्यवस्था की गई और फिर यहाँ पर जो है वो स्वरूप दामोदर जगदानंद इन्होंने प्रसाद वितरण का भार संभाल लिया और सारे भक्त जो है वो मजे से कीर्तन करते हैं हुए प्रसाद का आस्वादन करते हैं, हरी हरी बोलते बोलते सब लोग प्रसाद ले रहे। सबका प्रसाद होने के पश्चात महाप्रभु स्वयं अपने हाथों से पुनः एक बार सबको फूलों की माला और चंदन अर्पण करते हैं, सबको धन्यवाद देते हैं। तो इस प्रकार से सारे भक्त उनका प्रसाद हो जाता है और सारी भक्त मंडली अभी कीर्तन करने के लिए जगन्नाथ मंदिर में पहुंच जाती है और जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में जोरदार कीर्तन का प्रारंभ हो जाता है। महाप्रभु चार कीर्तन मंडली में विभाजन करते सारे भक्तों का, एक एक कीर्तन मंडली में 8 मृदंग और 32 करताल होते हैं। तो इस प्रकार से 4 मंडलियों का विभाजन किया जाता है और चारों मंडली प्रदक्षिणा करते हुए जगन्नाथ मंदिर की कीर्तन करते हुए जाते हैं और महाप्रभु जोरदार उन्मत्त होके नाचते हुए कीर्तन कर रहे हैं यहाँ पर। और इस प्रकार से जोरदार कीर्तन हो रहा है, कल्पना कीजिए एक पार्टी में जो है वो 8 मृदंग और 32 करताल है, मतलब कितना ऊंचा होगा। महाप्रभु उन्मत्त होकर कीर्तन कर रहे हैं, नृत्य होकर, सारे लोग यहाँ वहां देख रहे वो आकर्षित होते हैं महाप्रभु की तरफ देख के, महाप्रभु प्रेम की वर्षा हो रही है उनकी आंखों से, मानो गंगा और यमुना बह रही है और महाप्रभु कभी हंसते हैं कभी गाते हैं कभी नाचते हैं। इस प्रकार से अभी महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, अभी महाप्रभु चार महापुरुषों को आज्ञा देते हैं चार अलग अलग मंडली में नृत्य करने के लिए। सबसे पहले वो नित्यानंद प्रभु को एक मंडली में नाचने के लिए कहते, दूसरे मंडली में अद्वैताचार्य, तीसरे मंडली में वक्रेश्वर पंडित और चौथे मंडली में श्रीवास ठाकुर, ये अभी नृत्य प्रारंभ कर देते हैं और महाप्रभु हर एक मंडली में जा रहे हैं नृत्य कर रहे हैं, एक चमत्कार हो जाता है। सारे भक्तों को लगता है कि महाप्रभु हमारे ही मंडली में है। तो इस प्रकार से जो है वो बहुत दिव्य कीर्तन चल रहा था लेकिन एक व्यक्ति उस सबसे वंचित था, वो थे राजा प्रताप रुद्र, वो पुनः अपने महल के ऊपर से देख रहे है कितना कीर्तन। वो कहते कि ऐसा कीर्तन अभी तक यहाँ पर कभी नहीं हुआ था, ऐसा ये प्रेम संकीर्तन यहाँ पर है महाप्रभु ने रचाया हुआ है, लेकिन मुझे इसमें प्रवेश वर्जित है। इस प्रकार से राजा की उत्कंठा और बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है, बढ़ते ही जा रही है। और इस प्रकार से जो है वो बहुत सुंदर कविराज गोस्वामी ने सारे भक्तों का मिलन और जो इसे कहते हैं बेड़ा संकीर्तन, इसका वर्णन किया हुआ है। और सारे भक्त जब तक इस प्रकार से पुरी में थे तब तक हर रोज ऐसा कीर्तन वहां पर हुआ करता था। यावत आछिला सबे महाप्रभु संगे प्रतिदिन ए मत करे कीर्तन रंगे। इस प्रकार से जब सारे भक्त वहां पर थे महाप्रभु के संग में, प्रतिदिन ए मत करे कीर्तन रंगे, हर दिन वहां पर जो है वो इस प्रकार का कीर्तन जो है वो चलता रहता था। और कविराज गोस्वामी आशीर्वाद देते हुए हम सबको कहते हैं, एत कहिलु प्रभुर कीर्तन विलास ए बाई हा सुने हो चैतन्य रदास। इस प्रकार से मैंने महाप्रभु के कीर्तन विलास का वर्णन किया हुआ है, मैंने तो बहुत संक्षेप में बताया, आप जब पढ़ेंगे तो विस्तार से आप इसे पढ़ के आस्वादन कर सकते हैं। कविराज गोस्वामी आशीर्वाद में कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक ये कीर्तन महाप्रभु का सुनता है पढ़ता है, एबा इहा सुने हय चैतन्य रदास, वो व्यक्ति बहुत जल्द ही चैतन्य महाप्रभु का दास बन जाता है। इस प्रकार से आशीर्वाद कविराज गोस्वामी हमें प्रदान करते हैं। और आक्रव्य अध्याय जो था इसका अभी हम लोग देखेंगे पहला श्लोक, किस प्रकार से सारे भक्त आए और उद्दंड कीर्तन महाप्रभु ने किया। ग्यारहवें अध्याय का पहला श्लोक कविराज गोस्वामी रचना करते हुए कहते हैं, अत्युदंडम तांडवम गौरचंद्र कुर्वन भक्त श्री जगन्नाथ गेहे नाना भावालंकतांग स्वधामना चक्रे विश्वम प्रेम वन्या निमग्नम। अत्युदंडम अति उदंड तांडवम गौरचंद्र, गौरचंद्र भगवान ने जो है ये तांडव और अति उदंड अतिशय सुंदर ये नृत्य यहाँ पर किया है, गान किया है। कुर्वन भक्त श्री जगन्नाथ गे है, अपने भक्तों के साथ किया हुआ है और जगन्नाथ मंदिर में किया हुआ है। नाना भवालंकृत अंग और अपने अंग में दिव्य भाव अलंकृत किए हुए है, स्वधामना अपने आनंद के प्रेम के भाव में चक्रे यहाँ पर प्रस्तुत किया हुआ है, विश्वम प्रेम वन्या निमग्नम और सारे विश्व को प्रेम से ओतप्रोत भर दिया है। ऐसे महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ और उनके आशीर्वाद की याचना करता हूँ। तो इस प्रकार से हम लोग ने आज दसवां अध्याय जिसका शीर्षक था अलग अलग भक्तों का महाप्रभु से मिलन, जैसे नदी समुद्र को मिलती है उस प्रकार से सारे भक्त महाप्रभु से मिले। ग्यारहवें अध्याय में हमने देखा बंगाल से भी भक्त आए और किस प्रकार से महाप्रभु ने स्वयं उनका स्वागत किया, प्रसाद लिया और कीर्तन किया और ये उदंड कीर्तन वहां पर जो है वो इस प्रकार से हर रोज होता रहा। और अभी महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है, स्नान यात्रा हो गई है। स्नान यात्रा में मैंने कहा था किस प्रकार से जो है वो महाप्रभु दुखी हो गए थे, विरह का उन्होंने अनुभव किया था, इसलिए आलालनाथ गए थे, सार्वभौम भट्टाचार्य उन्हें वापस लेके आ गए थे। अभी स्नान यात्रा के पश्चात कौन सा महोत्सव आता है, तो महोत्सव आता है जगन्नाथ रथ यात्रा। और रथ यात्रा से पहले भी और एक महोत्सव आता है गुंडीचा मार्जन जिसे कहते हैं। तो अभी स्नान यात्रा हो गई है, अभी गुंडीचा मार्जन लीला उसका वर्णन आएगा। और राजा प्रताप रुद्र अभी उत्कंठा तो उनकी उतनी बढ़ गई है कि क्या उन्हें महाप्रभु अभी अपनी कृपा प्रदान करेंगे या नहीं करेंगे, इसकी चर्चा हम करेंगे हमारे कल के सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।